भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। हमारे जीवन में राग द्वेष के निमित्त निरंतर मिलते रहते हैं, चाहे कोई घर गृहस्थी में रहे, चाहे कोई साधु बनकर आत्म साधना करे, राग द्वेष के निमित्त तो हर जगह उपस्थित हो जाते हैं और उन सब से हम प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते हैं। अकेले निमित्त मिलना हमारे जीवन को कहीं मुश्किल में नहीं डालता, असल में निमित्त से हम जिस तरह प्रभावित होते हैं उससे हमारा जीवन आसान होता या कि मुश्किल में पड़ जाता है। किसी ने हमसे अच्छा व्यवहार किया, उसके प्रति हमारे मन में राग का भाव उत्पन्न हो जाता है। किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, उसके प्रति हमारे मन में द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है। उन क्षणों में हमारा दूसरे के प्रति व्यवहार क्या है ये हम नहीं समझ पाते हैं, दूसरे ने हमारे प्रति जो व्यवहार किया है वो हमें ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है, दिखता भी है, और उसके परिणाम स्वरूप हम प्रभावित होकर के फिर से नए राग द्वेष को उत्पन्न कर लेते हैं। और अगर हमारा उन क्षणों में सजगता और सावधानी रहे, दूसरे ने हमारे साथ क्या व्यवहार किया है ये महत्वपूर्ण ना लगे, हमारा दूसरे के प्रति व्यवहार क्या होना चाहिए इसकी सजगता बनी रहे, तो देखिएगा कितनी आसानी से हम अपने जीवन को संभाल सकते हैं। यहां हम दूसरे से जो भी अपने जीवन में व्यवहार पाते हैं वो अगर गौर से देखें तो वो हमारी ही किसी पूर्व संचित कर्म की प्रतिक्रिया है। हमारे प्रति जो दूसरे का व्यवहार है वो हमारे ही व्यवहार की प्रतिक्रिया है। हम आज किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, हम अभी और आगे के लिए उससे अपने लिए अच्छे व्यवहार का निर्माण कर रहे हैं, और हम जिसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं उससे हम आगे जीवन में कुछ बुरा पाएंगे ये हम अपने हाथ से तय कर रहे हैं। और अगर हम समता भाव रख लें तो तब फिर ये जीवन बहुत आसानी से अभी भी और आगे भी फिर ये राग द्वेष की परंपरा अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। यानी हमें अपने उपादान को जागृत करना चाहिए। निमित्त कैसे भी मिले और मैं उनसे प्रभावित ना हों, क्योंकि दूसरे को तो बदला नहीं जा सकता। हम ये सोचें कि ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार ना करे, जैसा हम चाहते वैसा व्यवहार करे तो जरा आसानी हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। हमारा मन हमारे वश में नहीं है तो दूसरे को हम अपने वश में कैसे कर सकते हैं कि हमारे अनुसार चलो। सबसे बेहतर यह है कि हमारा दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा है ये हम सावधानी रखें, यानी अपने अंतरंग में हम अपने परिणामों की तरफ झांक करके देखें, अपना आत्मचिंतन हम जागृत करें, तो संभव है कि हमारा दूसरे के प्रति व्यवहार, कम से कम वर्तमान व्यवहार, कर्म के उदय में जो व्यवहार हमारा होता है वो बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन हम अगर सावधान होकर के अपने व्यवहार को संभाल लें तो ऐसा नहीं है कि नहीं संभाल सकते हैं। हम जैसा व्यवहार करते हैं उसकी प्रतिक्रिया हम रोज पाते हैं, रोज तो अनुभव करते हैं। भैया सेक चिल्ली का उदाहरण, बच्चे क्या पढ़ते हैं वो अपने जीवन पर लागू होता। सेक चिल्ली का प्रसिद्ध उदाहरण है कि उसके लेटा हुआ था, विश्राम कर रहा था, तो चेहरे पर बार बार मक्खी नाक पे आकर के बैठ रही थी, और नाक पे आके बैठती थी तो उसको बड़ी झुंझलाहट होती थी। उसने दो चार दफे तो हाथ से उसको उड़ाया, और जब वो नहीं मानी तो उसने अब की बार तो बिल्कुल तैयार बैठा था कि आएगी तो मुक्का ही मारूंगा मैं, और क्या हुआ था फिर। अब सेक चिल्ली की है तो हंसने वाली कहानी, लेकिन अपने साथ क्या होता, ऐसे ही तो होता। वो मक्खी उसके नाक पर बैठी और उसने मुक्का मारा तो क्या हुआ, मक्खी तो उड़ गई पर लगी किसको, दूसरे ने हमको गाली दी और वो चला गया दे करके, और हमने जो प्रतिक्रिया उसके प्रति की उससे किसको हानि हुई, उसको क्या, हमें। दूसरा मुझे ऐसा करेगा तो मैं उसको ऐसा मजा चखाऊंगा। अब पहले खुद ही चखना पड़ेगा तब दूसरे को चखाओगे, उसके पुण्य का उदय होगा तो उसको न चखा पाओगे, लेकिन अपने जीवन को तहस नहस करने में देर नहीं लगती। जरा सा किसी ने शुभ अशुभ व्यवहार किया, हमारे तुरंत प्रतिक्रिया होती है, और यही प्रतिक्रिया निरंतर हमारे संसार को बढ़ाने में कारण बनती है। ये अगर हमने समझ लिया घर गृहस्थी में रह करके भी या कि साधु बन करके भी, दोनों स्थितियों मोक्ष मार्गी निमित्ताधीन दृष्टि रखेगा तो सिवाय संकलेश के कुछ नहीं होगा, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे साधु हो। निमित्ताधीन दृष्टि से हमारा संसार ही बढ़ता है। दृष्टि तो हमेशा हमारे अपने उपादान पर, हमारे अपने परिणामों पर होनी चाहिए कि हाँ सचमुच मैं अपने को संभालूं, सारे संसार को संभालने से तो कुछ संभलने वाला नहीं, सारे संसार के बिगड़ने से मेरा नहीं बिगड़ता, मेरा तो मेरे परिणामों से बनता बिगड़ता है। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, शायद कभी आपने कहीं पढ़ा हो या सुना हो। घर में दो ही व्यक्ति थे, स्वयं वो व्यक्ति था और उसकी जीवन साथी थी, बच्चे हुए नहीं थे, फिर भी मन में धन पैसे कमाने का बड़ा लालच था। कई बार जीवन साथी ने समझाया कि अब करना क्या है, अपन दोनों के जीवन के लायक तो है, अब किसको छोड़ करके जाना है यहां धन पैसा, लेकिन नहीं, कमाएंगे, और कमाएंगे तो पहले परदेश जाने की प्रक्रिया होती थी कि भैया परदेश जा रहे धन पैसा कमावे। तो जाने लगा तो जीवन साथी ने कहा कि मैं यहां अकेली क्या करूंगी, भगवान का मंदिर तो अपने घर में बना ही हुआ है, मुझे एक वीणा दिला दो, संगीत का शौक था, मैं वीणा बजा करके भगवान की पूजा आराधना में अपना समय व्यतीत करूं जितना, जब तक आप लौट के आएंगे। और ऐसा ही हुआ, वो व्यक्ति तो चला गया परदेश, जीवन साथी वीणा पर संगीत बजाकर भगवान के पूजन भजन में अपना समय व्यतीत करने लगी। एक दिन ऐसा हुआ कि दरवाजा खुला रह गया और ये तो अपनी पूजा आराधना में लीन थी, पास में ही जंगल था, वहां पर जैसे ही संगीत की ध्वनि पहुंची तो एक हिरण अचंभित होकर चकित होकर के खिंचा हुआ चला आया, और जब तक ये भगवान की पूजा में लीन रही तब तक वो हिरण भी वहीं संगीत सुनता रहा जाते समय, और अपने मुंह से और एक हीरा गिरा के चला गया। कहानी है भैया, नहीं तो तुम जा समझो कि ऐसो भूत है ऐसो। हाँ, कहानी में तो ऐसे ही है, अपने को क्या हीरा कैसे ऐसे थोड़ी गिरता है, वो तो खदान में से निकलता, कोई के पेट में से थोड़ी निकलता। तो गिरा के चला गया वो, और ये रोज का क्रम बन गया कि इसके समय होता भगवान की पूजा भक्ति का, संगीत शुरू होता, उससे सुनकर हिरण आता, मग्न हो जाता, प्रसन्न होकर के एक हीरा डाल करके और चला जाता। सो वो भी उसकी जो जीवन साथी थी वो उठा करके वो एक कमरे में उसको रखती जाती कि ठीक है पड़े रहेंगे यहाँ, यहाँ काय को पड़े रहें, वहाँ कमरे में पड़े रहेंगे, संभाल के नहीं रखा है, ऐसे ही रख दिया, डाल दिया। बहुत वर्ष गुजर गए, 12 वर्ष में परदेश से लौट करके वो व्यक्ति आया, सोचिए आप। और जैसे ही आया, संगीत में लीन थी, हिरण जरूर जा चुका था, पर जितने हीरे जवाहरात कमा के लाया था वो सब दिखाने का मन था। सो चुपचाप जब संगीत पूरा हुआ तो कहा कि मैं कितनी कमाई करके लाया हूं, तुम यहां क्या करती रही, भगवान की पूजा आराधना, इससे कुछ मिला तुम्हें, मैंने कितनी कमाई करी देखो जरा। सो सारी कमाई का एक हीरे में कन्वर्ट करके ले आया था, वो इतना ही था जितना कमाया था, सो एक हीरा में वो सब कमाई आ गई। तो उसने दिखाया कि देखो ये हमारे पास एक हीरा इतना कमा के लाया, हम इससे अपन क्या क्या नहीं खरीद सकते हैं, खजाना भर जाएगा, इतना कीमती बेशकीमती हीरा है। तो उसको हंसी आ गई उसके जीवन साथी को कि ऐसे तो इतने बहुत पड़े कमरा में तो बेकार परेशान भाई। तो जाकर के दिखाया तो चकित हो गया कि बात तो जी तो बहुत अद्भुत है, मेरा हीरा तो मैं इतने वर्षों में 12 वर्ष में कमा पाया और जी तो यहां पर, तो कोई ना कोई से इसका खोटा संबंध होगा। अब लियो, नई बात आ गई जी, होता कहानी में तो जीवन में भी यही होता है, किसी को आगे बढ़ के देखते हुए व्यक्ति को यही लगता है कि इसने जो कमाया है या जो पाया है वो सब खोटी चीज है, और हमने जो किया सो सब काम चोखा है। अब यही तो राग द्वेष का काम है, इसी से तो बढ़ता संसार, और क्या चीज है, कोई बहुत बड़ी पोथी में लिखी हुई चीज है क्या, जीवन में रोज देखने में आती, सुनने में आती, समझने में आती, जरा जरा सी छोटी छोटी सी चीजों में, और अपने राग द्वेष को अपन बढ़ा लेते। अब क्या होना था, बहुत स्पष्ट सी चीज है, मन में आ गया कि कहीं ना कहीं खोट है, उसने बहुत समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप अविश्वास कर रहे, 12 वर्ष मुझे व्यतीत हो गए आपके विश्वास पर, और आप एक मिनट में अपना विश्वास खो रहे हैं, पर आप खोने भरोसा हो तो कल देख लेना पूजा जब करूं तब। तो वाकई में दूसरे दिन देखा उसने कि जब पूजा कर रही है तो हिरण आया, संगीत सुन करके और जाते समय एक हीरा डाल गया। उसने कहा लगता तो ठीक है कि ये हीरा जो है, अब मन बदल गया कि कोई बात नहीं, तुम्हारा गलत संबंध तो नहीं है, लेकिन ये हिरण तो काम की चीज है, अब ले, अब हिरण काम की चीज है, अब हिरण काम की चीज है कि इसके पेट में भरे जैसे बहुत सारे, सो एक ही दिन में निकाल लो, इतना ही तो है बुद्धि, इतना ही तो है और क्या। सो दूसरे दिन जो है हिरण जब आया, सो उसको पकड़ करके उसको मारने का उपाय करने लगे, सो मारने का उपाय करते देख करके उस जीवन साथी को बहुत दुख हुआ, सो बीच में वो आ गई, बीच में आ गई, सो उसको पहले मार दिया, फिर बाद में हिरण को मार दिया, और अब दो ही गए, अब दो ही गए, और हिरण का जब निकाला उसमें से पेट में से, तो का हीरा निकलना था, वो तो प्रेम का था काम, वो तो श्रद्धा और भक्ति का काम था, सो ऐसे थोड़ी मिलती हैं ये चीजें। जाकर के सोचा कि जी तो क्या हुआ मेरे हाथ से, अब जाकर के बे हीरे जो रखे हैं कमरे में सैकड़ों की तादाद में वो देखूं, सो सब बे कांच के टुकड़े हो गए, क्या रहा हीरा बताओ जी। ऐसी घटना पढ़ करके कैसा लगता है अपन को, इसको घटाएं अपने जीवन पर कि हमारा जो व्यवहार होता है वो ऐसे ही कांच के टुकड़ों में बदलने वाला है हमारे अपने स्वरूप को। हम जिस तरह का व्यवहार कर रहे राग द्वेष का, उसके वजह से अपनी जो निजी संपत्ति है, जैसे अपन कहते कि जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, हे भगवान जिनेन्द्र आपके जैसे गुणों की संपत्ति मेरे पास भी है, वो मुझे प्राप्त नहीं है, बस इतना ही है मेरे पास, मेरी अज्ञानता से वो मुझे प्राप्त नहीं है, आपने जान लिया सो प्राप्त कर लिया। और अगर अपन भी चाहें उस चीज को आत्मचिंतन करें और अपने व्यवहार को जरा विचार करें, देखें कि अपने इस व्यवहार से ऐसा तो नहीं कि बाधा आ रही हो अपने उस स्वरूप की प्राप्ति में, उस संपदा की प्राप्ति में। ये छोटी छोटी सी संपदा में ही प्राप्त करने में पूरा जीवन लगा दूंगा कि अपनी उस प्राप्त संपदा को उद्घाटित करने के लिए मुझे समय निकालना है, इतनी भर मन के अंदर आ जावे भाव। और दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा हो जावे, दया करुणा का हो जावे, मूर्छा से रहत सजग और सावधान व्यवहार हो जावे, तो फिर देखिएगा ज्यादा कठिन नहीं है। और उसी के लिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं, एक 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 कदम आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, भगवान जिनेंद्र की पूजा आराधना, उनके प्रति भक्ति भाव रखा, अपनी जो आकांक्षाएं थी पांच इंद्री और मन के विषयों की, उन सबको कमती किया, घंटे भर सुबह दोपहर शाम समय निकाल करके अपने उस आत्म चिंतन की प्रक्रिया को शुरू किया, उसमें दृढ़ता लाने के लिए पर्व के दिनों में पूरा ही पांच पाप से मुक्त हो करके और दिन भर अपने ही उस स्वरूप का विचार किया। कहते कि उस स्वरूप का विचार करने से मन के भीतर अत्यंत निर्मलता और दया का भाव उत्पन्न होता है, और उस दया के चलते क्या प्रक्रिया शुरू होती। कहते मूल फल शाक शाका करीर कंद प्रसून बीजानी नामानी योति सचित विरतो दया मूर्ति। अब वो दया की मूर्ति हो गया, सदगृहस्थ को कह रहे हैं। बताइए घर गृहस्थी में रह करके दया की मूर्ति शब्द से उसको उच्चरित कर रहे हैं, इतना बड़ा श्रेय देने वाले आचार्य समंतभद्र स्वामी हैं। कहते आत्मचिंतन जितना करता चला जाता है व्यक्ति, उतना ही फिर कदम कदम पर उसे लगता है कि मेरा व्यवहार तो दया और करुणा पूर्ण ही होना चाहिए, समता भाव पूर्वक ही मुझे जीवन जीना चाहिए। अब जितनी भी खान पान की चीजें हैं, पांच इंद्री मन के विषय हैं, भोग उपभोग की सामग्री है, वो सब इस तरह की ही प्राप्त करूंगा जिससे कि मेरे दया परिणाम बने रहें, अर्थात दूसरे का मेरे द्वारा घात ना हो। मेरे जीवन चलाने के लिए मैं दूसरे के जीवन में मुश्किल डालूं तो मानिए मैं अपने जीवन में मुश्किल खुद खड़ी कर रहा हूं और कुछ नहीं। जितनी मुश्किलें आज वर्तमान में हम सबके जीवन में हैं, उसका कारण हमारे ही भीतर है कि हम अपने जीवन को जीने के लिए सुबह से शाम तक दूसरे के जीवन को सांसत में डालते, मुश्किल में डालते और कुछ नहीं, कदम कदम पर, और दूसरे से अपेक्षा रखते अच्छे व्यवहार की और खुद करते उसके साथ खोटा व्यवहार। कभी अपना व्यवहार दूसरे के प्रति कैसा है ये देखने में नहीं आता, दूसरों हमारे संगे ऐसो करत, दूसरों हमारे संगे ऐसो करत, उनने हमारे संगे ऐसो करो, भैया तुमने कैसो करो, जो तो देख लो उन्हें तो जैसो करो सो तुम्हें दिखा रहा हूं, इतना ही और कुछ नहीं। हमने कैसा किया पूरे जीवन, हमने 50 वर्ष अगर गुजर गए हैं तो उन 50 वर्षों में हमने किसके साथ कैसा किया, जरा एनालिसिस तो करें घंटे भर बैठ करके, तो बड़ा दुख लगेगा मन में कि हमने ठीक नहीं किया। अभी तो ये विचार चलता है खाली बैठ के कि उनने हमारे संगे अच्छो नहीं करो, उनने नहीं करो, उनके सामने हमने कितो अच्छो करो, उनने का करो हमारे संग, अभी ये विचार चलता। और अगर उसका जरा सा विपरीत हो जावे कि हमने कितनी करुणा और कितनी दया रखी, अगर दया का परिणाम आएगा तो ये ऐसा विचार आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। समता के भाव होंगे तब जाकर के अपने एनालिसिस करने का मन होगा, वरना तो सारी दुनिया का एनालिसिस करने का मन होता कि इसने ऐसा किया और उसने वैसा किया। कहने को तो आचार्य महाराज बाहरी चीज कह रहे, लेकिन झांक कर देखें कि हमारे अंतरंग को संभालने के लिए कह रहे कि ये जो पांच इंद्री के मन विषय हैं, उन सब के लिए भोग उपभोग की सामग्री के लिए ही तो हम इतना सुबह से शाम तक करते हैं, और अगर हमारे अंदर दया का परिणाम आ जावे तो ये सारी प्रक्रिया ठीक हो जाएगी। हम कुछ भी ग्रहण करेंगे तो प्रासुक ही ग्रहण करेंगे। बताइए खाने पीने ओढ़ने बिछाने की सामग्री जो रोजमर्रा के लिए जीवन में काम आती है, प्रासुक, प्रासुक यानी जीवों के संचार से रहित होने पर ही उपयोग में लेऊंगा। एक तो पेड़ से और फलखों झटक करके तोड़ लेना, और एक जो है उसके पक जाने पर तोड़ना, और एक पक करके गिर जाने पर उठा लेना। बहुत फर्क है तुम सब चीजों में। ठीक ऐसी ही प्रक्रिया, जो जितना दयावान होगा उसकी उतनी कम आशक्ति होगी। ठीक है भाई, थोड़े और रुक जाओ, पक जान दो, पक करके गिर जाएगा तो ले लूंगा, ऐसी प्रक्रिया आ जाएगी। अगर और नहीं तो हमें चाहिए जिस समय चाहिए उस समय, तुम्हारा जो कछु होवे सो तुम जानो। हमें तो चाहिए इसी समय तो हम उसको ले लेंगे उस समय। और आचार्य भगवंत कह रहे कि नहीं, सावधान रहना, यह जो तुम कर रहे हो दूसरे के प्रति, लौट करके तुम्हारे प्रति ही कल के दिन होने वाला है। इसलिए अपने परिणाम, अपना व्यवहार स्वयं दूसरे के प्रति संभालो। घर परिवार में विचारों का भेद, रुचि का भेद, कार्य शैली का भेद, बहुत प्रकार के भेद हैं, और जितने भेद हैं उतना राग द्वेष है। ये ध्यान रखना। घर गृहस्थी में विचारिक वैचारिक भेद बहुत होता। जिस घर में वैचारिक भेद कमती होगा उसमें बड़ी शांति हो, जिसमें रुचियां अलग अलग होंगी अपनी, फलाने खुंजो चाने, फलाने खुंजो चाने, वो सबकी रुचि अलग अलग होने पर क्या होगा, राग द्वेष ही होगा। विचार भेद के साथ साथ कार्य करने का अपना अपना ढंग, तो ये कार्य शैली सबकी अलग है। इतने भेद होने के बाद भी कह रहे कि उस अभेद आत्म स्वरूप की तरफ ध्यान रहेगा तो इन भेदों के बीच में भी और हम आसानी से अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे, वरना तो इन भेद में राग द्वेष ही उत्पन्न होगा। तो अपना संकल्प कर लिया कि हमको तो अपने जीवन में ऐसा करना है, तो फिर चाहे जिसको जैसा करना हो, हमें किसी से कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। हमने अपना तय कर लिया कि इस तरह करेंगे जिससे किसी को बाधा ही उत्पन्न ना हो। हम अपने खान पान में भी इस तरह से करेंगे, पानी अपनो छान के दल लो, 24 घंटा को गर्म कर लो, उनको उसे बोल लेने लेने जाने अपने उठाओ सो अपने पी लो, सो उसमें भी जीव हिंसा से बच गए और दूसरे को कोई पे बोझ नहीं बने। क्यों हमें छान के ले आओ रे कि फलो न करो, हमाओ नहीं भर दो, पानी जो नहीं कर दो, और ये अपने हाथ से करो और बस। स्वाधीनता भी आ गई, अपना संकल्प भी पूरा हो गया, अपने अंदर दया का परिणाम भी बना रहा, राग द्वेष के अवसर मिलने पर भी राग द्वेष नहीं हुआ। बताइए, हमें अपने समय में ध्यान है, छोटी सी चीज है, आत्म श्लाघा आत्म प्रशंसा के लिए नहीं कह रहे भैया। हम उस समय 1977 में 78 में और एक उसमें गए थे, क्या बोलते कैंप होता है सर्वे का, तो उसमें 25 दिन का फील्ड वर्क था। अब उसमें गए और ये ओंकारेश्वर जो मानधाता है अपना सिद्धवर कूट उसके उस पार है, इधर ओंकारेश्वर है, वहां उस समय पुल नहीं बना था, बन रहा था, तो उस पुल पर से जाकर के और सिद्धवर कूट नदी से चले जाते थे। मंदिर जाने का मन में संस्कार था कि मंदिर जाएंगे भाई, फिर उसके बाद 2 बजे तक न मिले दर्शन, मान लो कभी कभी 2:30 बजे दर्शन मिलता था, तो उसके बाद फिर जो भी खाना है उसके बाद खा लेते, मर थोड़ी जे नहीं खेए सो कछु। अब अपने अपने संकल्प की बात है ये, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं, संकल्प अपन कर ले कि ऐसा करना है तो सब चीजें आसान हो जाती। अब उसमें क्या हुआ कि पानी छान के पीने की आदत थी, अब पानी छान के पीने की आदत है तो होते तो जो पानी भरो है सो वो सबको छाने और 4 जनों के सामने अपना दिखावो दिखावा करें, सो अपने 1.5 किलोमीटर थी नदी, सो वहां से सुबेरे वो गोमुख था, सो वहां से पानी निकलता था साफ सुथरा, सो अपनी बाल्टी में छन्ना लगाया, छान के वहीं जीवानी करी, अपने रख लिया। इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, गर्म करके नहीं रख सकते, इतने ही छनो है, एक बार छन गो उतना ही ठीक है, गृहस्थ है कौन कछु प्रतिमाधारी है थे उस समय, सो इतना ही इतना हो गया। अब वो छना पानी रखा था, पर एक बार क्या हुआ कि वैसे तो लौट के आते थे अपना काम करके फील्ड वर्क करके 4 बजे, और उस दिन लौट के आ गए हम लोग सब 1 बजे, काम कम था, कम कंप्लीट हो गया था, 1 बजे आए, सो सब जने आराम से थोड़े घंटे भर विश्राम करके वहीं, और फिर चलो अब भोजन के लिए, नहीं तो पहले तो आते थे उसने देखा ने सुना और भोजन करने सब बैठ जाते थे। हमने उसमें कभी शामिल नहीं लिए, चपाती अपनी अलग रखवा ली, बाहर से खरीद करके फल फूल और टमाटर लेके आए, आराम से उससे अपना भोजन कर लिया, किसी से क्या आलू प्याज से और किसी के क्या अभक्ष से, क्या मतलब उस टाइम में। आज के बच्चों की बात अलग है, आज तो जमाना बदल गया इन सब चीजों में, आज तो सब इनको संकल्प की लगन नहीं है ना, संकल्प की अपने सिद्धांत की, कि नहीं हमारा अपना सिद्धांत है, हमारा जीवन हमें कैसे जीने ये हमारी चॉइस है, संसार कैसे जी रहा है ये उसकी चॉइस है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते, हम अपना जीवन अपने ढंग से जीते जिससे दूसरे को कहीं कोई तकलीफ ना हो। ये प्रक्रिया आचारी भगवंतों की दी हुई प्रक्रिया है। हमारा पानी छना हुआ रखा था, लोगों ने जब उसमें पानी वो जो वहां था भरा रहता था एक ड्रम, उसमें से निकालना चाहा पानी, तो पड़े पड़े एक व्यक्ति ने देख लिया कि उसी में से तो टॉयलेट के लिए निकाल के मग्घा ले जा रहा हूं और उसी में से अपन को पीना पड़ता होगा रोज। सबका मन खराब हुआ, एक ने जाकर के झांक के देखा तो उसमें वो छोटे छोटे हो जाते कीड़े, बहुत दिन से होदी में पानी भरो रहे तो भी ऐसे ऐसे कीड़ा हो जाते काले छोटे छोटे से, वो दिख गए उसमें नीचे। अरे अब सब गड़बड़ में कि भोजन तो कर लिया और पानी तो इसमें से पिए नहीं जाएगा और 1.5 किलोमीटर दूर है नदी। याद आया कि मिस्टर जैन के पास बाल्टी में भरा हुआ रखा होगा है, अब मेरे कमरे पर आए। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी देने में, लेकिन एक मौका तो मुझे मिल गया उस समय। मैंने कहा भाई तुम सबका तो छने पानी का त्याग है भाई, अभी तक तो हमसे कहते थे कि ये छने पानी वाले आ गए, अब तुम्हारो तो छने पानी को त्याग है, जो कहा हमारो तो छनो है सो तुम्हारे का काम को। अरे कहने लगे तुम हम लोगों को ऐसे व्यंग मत करो यार। हमने कहा नहीं आप ले लो, लेकिन एक शर्त है कि पानी कोई छान करके पिए तो उसकी इंसल्ट नहीं करे। हम आपसे ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप पानी छान के पियो, हम लेकिन हम पी रहे हैं तो आप उसकी इंसल्ट नहीं करें, आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश मत करो कि ये आगे छने पानी वाले। ये होता है संसार में, सबके मन में दूसरा कुछ करता है ना तो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत चुनौती होती कि ये कर पा रहा और मैं नहीं कर पा रहा हूं। ये बहुत बड़ी चुनौती है साइकोलॉजिकल, उसमें लिखा हुआ सॉर्ग्रेस रेजनलाइजेशन कहलाता है ये, कि दूसरे को आगे बढ़ते देख करके एक चुनौती अपने मन में आती कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर दूसरे को हाउ टू डिफीट, तो फिर लैग पुलिंग, टांग खींचो, गिरा उसको, पटको, नहीं तो ये तो अपन से आगे बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये पूरा मैकेनिज्म है जो मन के अंदर चलता रहता है, ये सब आचार्य भगवंत सब जानते थे। इसलिए पहले नंबर कह दिया कि अपने मन को संभालने के लिए सजग रहो, सावधान रह करके मूर्छा को तोड़ो और संकल्प ले लो, वरना जैसे निमित्त मिलेंगे वैसा प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाओगे। तुम्हारे संकल्प की वजह से अगर हमने प्रासुक भोजन करने का संकल्प ले लिया है तो कितने ही कैसे ही निमित्त बन जाए भोजन नहीं करेंगे और क्या होगा इससे ज्यादा, पर जब ठीक होगा तब करेंगे। अब वो चना पानी सबने ले लिया, फिर सब हमारे साथ गए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फिर पानी छाना और अब सब जो है अपने अपने कमरे में बाल्टी में पानी छान छान कर भर के रखे हुए हैं। एक छोटी सी प्रक्रिया जो है हमारी दूसरे के जीवन को डिस्टर्ब नहीं किया और हमारे अपने जीवन से हमने दूसरे को चाहे तो संदेश दे सकते हैं। ये पांचवी प्रतिमा वाला श्रावक अपने दया के परिणाम के द्वारा सारी घर गृहस्थी में और अपने आसपास के परिवेश में दया लुटाता है और स्वयं अपना जीवन दयालु होकर के जीता है, तो अपना आत्म कल्याण करता और दूसरे का भी। भैया सबके भीतर हैं तो अच्छे परिणाम, लेकिन सवाल यह है कि कब वो प्रकट होंगे। तो दूसरे के परिणाम प्रकट करने के लिए अपन को भी सावधानी रखना चाहिए कि दूसरे के भीतर की अच्छाइयां प्रकट करने के लिए अब जरूरी है कि अपने भीतर की अच्छाइयां प्रकट करें तो दूसरा भी देख करके और संभव है कि वो भी कोई प्रेरणा ले तो ले सकता है। एक छोटी सी घटना सुनाऊं आपको और बात पूरी करूं। काय की भोजन तो हमने बता तो दई संक्षेप में, अब कहा गुणगान विस्तार की उम्मीद जरूरत नहीं है। हाँ मतलब महाराज का ये कहना कि और किस तरह से किया करते थे, तो वो सब चीजें बहुत मैंने आपसे संक्षेप में कहा कि आप अपने जीवन का जैसा डिसिप्लिन जैसा जैसा डिसिप्लिन आप बना लीजिएगा वैसा डिसिप्लिन बन जाएगा अपने जीवन का जीने का ढंग। रात में नहीं खाना है तो भगवान भी आ जाए तो टस से मस नहीं होने का मामला, सीधा सीधा जो खाना है बस उतना ही खाऊंगा चाहे कुछ भी चीज हो जाए। आपने उसमें एक बार वो ये जानना चाह रहे हैं, एक बार किसी ने मेरे पूरे चपातियां रखी हुई थी और उसमें आलू टच कर दिया था, मैंने कुछ नहीं कहा था किसी से, वो एक एक चपाती सबको दे दी थी कि यार आज तो तुम्हारे भाग्य में एक एक और ज्यादा है, तुम्हें आठ आठ मिली हैं तो सबको एक एक और लो। उन्होंने कहा तुम, मैंने कहा एक दिन नहीं खाऊंगा तो कोई ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ता, पर ये वाली जो इसमें आपने ऐसा किया है उससे आपको कोई लाना नहीं दे रहा हूं, पर मैं नहीं खाऊंगा आज। तब उसको देख करके दूसरे दिन से किसी ने जरा भी टच नहीं किया था किसी भी चीज को कि नहीं ये तो मामला गड़बड़ है, नहीं खाया नहीं खाया, पूरे दिन नहीं खाया, फल फूल खा करके और रह गए, नहीं खाएंगे चपाती, नहीं अब कंसीडर कर लो, एडजस्ट कर लो, अब ऐसे ही है। ऐसे नहीं चलता, ऐसे एडजस्टमेंट कहां तक, एडजस्टमेंट सारे संसार से करेंगे लेकिन अपने कल्याण वाले मामले में नहीं करेंगे। अपने खाने में और माथा झुकाने में दो जगह एडजस्टमेंट नहीं चलता, कहां मेरी श्रद्धा वहीं माथा झुकाऊंगा, जो इस मुंह में डालना है डालने योग्य है वो डालूंगा, बाकी इसमें कहीं एडजस्ट नहीं करूंगा, बाकी सब चीजों में एडजस्ट करूंगा। ये चीज जो है एक बार बहुत बहुत साहस चाहिए इसके लिए, मैं कहता तो रहता हूं हमेशा आपसे, पर आप स्वयं तय करेंगे जब आपको इस चीज का अनुभव होगा खुद मजा आएगा। सबके भीतर जो बहुत एक अच्छी चीज है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, सबके भीतर दया है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसको कब हम प्रकट करेंगे ये हमारे संकल्प पर निर्भर करता है। हम एक बार संकल्पित हो जाएं तो हमारे भीतर भी दूसरे को देख करके दया का परिणाम और जीवन पूरा दयामय हो जाए तो सारा कुछ बदल सकता है। ये कहाँ स्वार्थ, कहाँ राग द्वेष, सब चीजें खत्म हो सकती हैं दयालुता अगर भीतर आ जावे तो। एक सेवक जो है राजा की बहुत सेवा करता था, और एक बार क्या हुआ कि वो राजा साहब हाथी पर सवारी करके और निकल रहे थे, और उनकी जो सजाया गया था हाथी उसमें तो मखमल पर और हीरे थोड़ी लालच आ गई, और उसने कहा इतने तो राजा साहब के पास हीरे जवाहरात हैं, हाथी पर तो बैठे राजा साहब और बैठने की उनकी गद्दी पर इतने लगे, एक आधापन रख लूँ तो क्या फर्क पड़ता। उसने धीरे से उसमें से निकाला और रख लिया, लेकिन अब कितना धीरे से निकालो देख लो तो कोई सैनिक ने देख लिया तो पकड़ लिया तो राजा को शिकायत करके कि इनने आपकी मसनद में से जो जिस पे आप बैठे थे हाथी पर उसमें से एक हीरा निकाल लिया। इससे पूछा कि क्यों भाई, क्या ले हाँ निकाल लो। अब ऐसे होते थे भी लोग भी ऐसे होते थे, निकाल लो। उन्होंने कहा निकाल लिया तो गुस्सा आ गया राजा को कि मेरे सेवक होकर के तुमने ऐसा किया, जाओ उसको तुम फांसी की दे दो। ऐसे सीधे सीधे हिसाब रहता था, फांसी दे दो। अब आप वाली प्रक्रिया नहीं है कि पहले सिद्ध करो कि तुमने करो कि नहीं करो, चार जने गवाह में ले आओ, फिर 14 साल तक तुम्हारा निर्णय हुई है, फिर वो कि जब तक मरा ही जाएगा वो। हाँ, ये तो अलग, आज की न्याय व्यवस्था अलग ही है। तो करो, तुमने सुनने स्वीकार करो उनने की तुम दंड लो और जाओ अपने प्रायश्चित करो। दंड दे दियो, दंड भी कैसा, सीधी फांसी की सजा दे दी। अब जब फांसी के लिए ले जाने लगे तो अंतिम इच्छा पूछी जाती, सुकेती भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, के ते राजा साहब के दर्शन करने। अरे उन्हीं राजा साहब ने फांसी दी और उन्हीं के दर्शन करके मरो चाह रहे, बताओ कैसा बुद्धू आदमी। सबने यही सोचा कि बुद्धू आदमी है, लेकिन अब ठीक है इच्छा है, सुन ले गया उसको राजा के सामने। सो राजा ने कहा भाई हो गए दर्शन, के ते आदि भय, आधे भाई तो कैसे आधे और कैसे पूरे। कहते राजा साहब अभी तो हमने आपकी खीज देखी है, अभी तो हमने आपका गुस्सा का दर्शन किया है, हमने आपके प्रेम का दर्शन नहीं किया, आपके प्रेम का दर्शन और करना चाहिए। बस इतनी बात सुनी सो राजा गदगद हो गए, कह ले जाओ इसको माफ कर दो जी, हो गया पूरा दर्शन हो गया। बताओ उनके भीतर थी तो दया, लेकिन सामने वाले का ये कर्तव्य है कि वो दूसरे के लिए भी उस दया का, उस अच्छाई का उपाय करे जिससे उसके भीतर से वो अच्छे परिणाम निकले। भाई दो ही स्थितियां हैं, के तो हम संकल्प करके और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, ओके फिर हम अच्छे लोगों के बीच में रहें, अच्छी संगति करें जिससे उनसे प्रेरित होकर के हमारा जीवन अच्छा बने। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो, हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सुख
पावे सुख
ऐसे ज्ञान ध्यान गुण बल है ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है शांत दिगम दिगंबर मुद्रा जिन की मंदिर तुल्य अचल है मंदिर तुल्य अचल जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है तैशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने
बोलिए भगवान महावीर स्वामी के आचार्य कुंद कुंद स्वामी के आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की हम सभी लोग पिछले कई दिनों से लगातार अपने जीवन को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए विचार कर रहे हैं साधु अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीने का प्रयास करता है और एक सद्गृहस्थ भी घर गृहस्थी में रहकर अपने जीवन को बेहतर और अच्छे ढंग से जीने के लिए पुरुषार्थ करता है करना चाहिए जीवन को जीने का बेहतर ढंग क्या है कोई भी कह देगा जितना जीवन निराकुलता में बीते उतना बेहतर उतना अच्छा और जितनी आकुलताएं घेर लेवे उतना ही जीवन जीना मुश्किल जीवन में आसानी अगर आती है तो निराकुलता में आती है छेडाला में दौलत राम जी लिखते हैं आत्म को सुख है हित आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कही
अगर हम अपने जीवन में वास्तव में सुख चाहते हैं, जीवन को शांति से जीना चाहते हैं, तो आकुलताएं जितनी कम कर सकें उतना पुरुषार्थ आकुलता कम करने का करना चाहिए। सुबह से शाम तक अगर हम देखें और कि हमारे जीवन में राग है, द्वेष है, मोह है, ये तीन बहुत प्रसिद्ध सी चीजें हैं, लेकिन इनके अर्थ बहुत स्पष्ट से अपन को नहीं मालूम पड़ते, कहने में आसान मालूम पड़ता है, पर ये जो मेरे तेरे का भाव है वो क्या है, ये अपने और पराये का जो भाव है जो सुबह से शाम तक चलता रहता है, ये क्या है? यही तो राग द्वेष है। और मेरी इसमें जो आसक्ति है, मेरी जो इसमें गाफिलता है, अज्ञानता है, वो मेरा मोह है। मैं इसे छोड़ नहीं पाता हूं, जान तो जाता हूं कि ये ठीक नहीं है, अपने प्राय तेरे मेरे का भेदभाव, इसमें तो मुझे ही आकुलता होने वाली है, ऐसा जान भी लेता हूं, लेकिन भीतर की आसक्ति जो है वो जाती नहीं है, वो मोह जाता नहीं है, जिससे कि प्रेरित होकर के ये राग द्वेष के परिणाम निरंतर चलते रहते हैं। एक साधु के जीवन में मोह घट जाने से राग द्वेष की परिणति कमती हो जाती है, लेकिन एक गृहस्थ के तो मोह की प्रबलता के कारण राग द्वेष की प्रवृत्ति घनी ही देखने में आती है। सो क्या करे वो सदगृहस्थ, अपने मोह को घटाने और राग द्वेष को कम करने के लिए पुरुषार्थ करे, यही कर सकता है। और मोह घटता है भगवान जिनेन्द्र के पंच परमेश्वरी के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करने से। अपन ने पिछले दिनों ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझी है कि अरहंते सो भक्ति सम्मतम, अरहंत भगवान के प्रति जो हमारी शुभ भक्ति है वो हमारे मुंह को घटाकर हमारी दृष्टि को समीचीन बनाएगी, और जिसकी दृष्टि जितनी समीचीन है उसके जीवन में राग द्वेष उतने ही कम। या ये कहें कि राग द्वेष घटावने की श्रद्धान का नाम ही दृष्टि की निर्मलता और सम्यक दर्शन है। तो अगर ऐसा पुरुषार्थ हम करें कि हमारा मोह भी घटे और साथ में राग द्वेष घटे, निराकुलता बढ़ती चली जाए, तो आत्म सुख हम इस जीवन में प्राप्त करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है? मेरा अपना सोच, मेरे अपने विचार। अगर इस पे हम सोचें कि हाँ सचमुच मेरे अपने सोच और विचार के अनुसार ही तो मैं अपने कर्म करता रहता हूं, मेरा सोच सही है, समीचीन है, तो मेरे अपने कर्म भी समीचीन हो जाते हैं। और अगर एक विचार जिसके असमीचीन है, जिसे हे उपादेय का विवेक नहीं है, वो कैसे भी कर्म क्यों ना करे, वे कर्म उसके जीवन को निराकुलता नहीं दे पाते हैं। वे कर्म थोड़े से सुख सुविधा के लिए साता का आश्रय तो करा देते हैं, लेकिन निराकुलता मेरी स्वाभाविक अवस्था है उस तक नहीं ले जाते वे कर्म, चाहे वे कर्म शुभ अशुभ किसी भी प्रकार के क्यों ना हो। अगर मेरे विचारों में समीचीनता नहीं है तब तो विचारों की समीचीनता बहुत जरूरी है, और अपने विचार ही तो गड़बड़ा जाते हैं। हम अपने विचारों को व्यवस्थित करें, सुबह से शाम तक जो हमारे विचार निरंतर चलते रहते हैं उन पर हमारी ग्रिप नहीं है, बल्कि हमारे तो ऊपर विचारों की ग्रिप है, हम उसके अनुसार ही अपने जीवन के कर्मों को प्रवर्तित करते रहते हैं। हम थोड़ी सी चेतना को जागृत करें, सत्संगति के माध्यम से जागृत करें, स्वाध्याय और धर्म ध्यान के माध्यम से जागृत करें, जिससे कि हमारे विचारों में समीचीनता आए, हमारी दृष्टि में आए, जिससे कि हमारा राग द्वेष का जो प्रपंच वो घटे। एक प्रयोग किया गया कैसे विचारों का प्रभाव पड़ता। 20 लोगों को इकट्ठा किया गया, ऐसे 20 लोग जो एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते, अपरिचित हैं, कोई उनका आपस में मिलना जुलना परिचय नहीं हुआ, और उनको एक एक कागज और कलम दे दी जाती है, एक बार एक नजर भर वो एक दूसरे को देख लेते हैं और फिर कहा जाता है कि अब अपने इस पर लिखो। सबके नंबर डले हुए थे 1 से लेकर के 20 नंबर तक। सो अपने अपने कागज पर लिखो कि कौन अच्छा और कौन बुरा। तो जिसके जो समझ में आया, 200 लोगों ने बाकी 19 के बारे में भले बुरे का गणित बिठाला। मजे की जो बात हुई अंत में वो महत्वपूर्ण वही है, एक व्यक्ति ने भले लोगों की लिस्ट में 1 से लेकर के 19 तक लिखे, एकमात्र अपना नाम बुरे लोगों की लिस्ट में लिखा। और एक व्यक्ति ऐसा जिसने अपना नाम भले लोगों में लिखा, शेष 19 बुरे लोगों में लिखे। और रिजल्ट देखिएगा, जिस व्यक्ति ने अपना नाम भर बुरे में लिखा, बाकी सबका भले में लिखा, आप आश्चर्य करेंगे कि शेष 19 लोगों ने उसका नाम भले लोगों में लिखा। और जिस व्यक्ति ने सबका नाम बुरे लोगों में लिखा था, अपना भर भले लोगों में, उसका नाम सबने बुरे लोगों में लिखा, जबकि एक दूसरे से कोई परिचित नहीं था। कितना प्रभाव पड़ता हमारे विचारों का। और ये हम 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के बारे में भला बुरा सोचते हैं, उसका इंप्रेशन एक दूसरे पर पड़े बिना नहीं रहता। मैं आपके बारे में अच्छा सोचूं, आपके भीतर भी मेरे बारे में अच्छा विचार आए बिना नहीं रहेगा। और अगर मैं आपके बारे में खोटा सोचूं और आपके साथ ही रहना है, तो आपके मन में भी मेरे प्रति खोट आए बिना नहीं रहेगी। इतना प्रभाव पड़ता है हमारे विचारों का। और राग देश इसी तरह से बढ़ता रहता है। घर गृहस्थी में कोई व्यक्ति नहीं भी चाहे राग देश करना, शांति से रहना चाहे, तब भी वातावरण जो राग देश का है वो उसे प्रभावित किए बिना नहीं रहता। उपादान की जिसकी योग्यता है वही बाह्य निमित्त मिलने पर प्रभावित नहीं होता, वरना तो अधिकांश हम और आप और उसी में ढलक जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में क्या करें? तो आखिरी में यही बात आती है कि अपने उपादान को जागृत करें, जिससे कि ये बाह्य निमित्त हमें प्रभावित ना करें। अपनी अंतरंग निराकुलता की तरफ हमारा ध्यान रहे, बाहर आकुलता के चाहे जो उपाय किए जाएं, लेकिन मैं उससे अपने मन को आकुलित ना करूं। इतना पुरुषार्थ अगर जीवन में हम रोज थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, ऐसे एकदम कहने से थोड़ी हो जाएगा कि हमने कहा निराकुलता सो आ गई निराकुलता। भाई अभ्यास करना पड़ेगा, जितना हम अभ्यास करेंगे उतनी हमारे भीतर दृढ़ता भी आती चली जाएगी। उस दृढ़ता के चलते फिर हम अपनी उस निराकुल अवस्था को भी अनुभव कर सकते, थोड़ी देर, घड़ी घंटा सही। और उसी के लिए तो अपन ने कल बैठ करके ये बात की थी कि भाई अब तो तीसरी प्रतिमा ले लेते हैं सुबह दोपहर शाम, और जरा निराकुलता की साधना करेंगे, अभ्यास करेंगे, समता का कैसा स्वाद है उसका हम भी तो लेके देखें। तब गृहस्थ जीवन में भी सामायिक के द्वारा निराकुलता का अभ्यास करने का प्रयत्न करता है एक सदगृहस्थ, वरना तो विषमता में ही, आकुलता में ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाता। आप देख लो, कभी किसी को 24 घंटे में ऐसा लगे कि अब कछु काम नहीं है हमें घर गृहस्थी का, लगे हुए सुबह से शाम तक। अगर घंटा भर को मंदिर ने आवे तो वो घंटा भर भी वही घर गृहस्थी के काम में निकल जाए, उसी राग देश में और मोह में। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कोई ऐसा हो कि अब 23 घंटे में से 1 घंटे बिल्कुल फुर्सत वाला है जिसमें राग देश करने का कोई काम ही नहीं है। तो वहां आप रहेंगे, वहां पर राग देश और मोह हुए बिना नहीं रहेगा। ये तो अपन उसमें से बचा लेते हैं जितना वही सार्थक हो जाता। तो अब हम 1 घंटे सुबह दोपहर शाम निकालते हैं जिसमें हम समता का अभ्यास करते, अपनी उस निराकुलता, उस आत्म सुख की जो वास्तविक अवस्था है उसका स्वाद लेने की कोशिश करते हैं। तब जाकर के हमारे अपने परिणाम, जो हमारे अपने द्वारा भी नहीं संभलते, भैया बहुत मुश्किल है अपने ही परिणाम संभालना, अपने लिए मुश्किल हो जाता अगर ये क्रियाएं नहीं करें। तो अपन नहीं संभाल पाएंगे, दूसरा तो संभाल ही नहीं सकता। एक और छोटी सी घटना मुझे याद आ गई। एक राजा साहब एक घूमने निकलते थे तो चंदन वाले की दुकान थी, चंदन बेचता था वो, उसके सामने से निकलते तो उनको बड़ा मन में ऐसा आता कि ये खराब आदमी है और इसको तो फांसी दे देना चाहिए। एक दिन अपने मंत्री जी से कहा कि भाई तुम रास्ता बदल लो यहां से निकलने का, ये अच्छा भला आदमी है, चंदन बेचता है, मेरे ही गांव का शहर का है, और मेरे मन में इसके प्रति ऐसी खोटे भाव आते कि इसको फांसी लगा दी जाए। मंत्री जी ने कहा कि राजन धैर्य रखो, कोई ना कोई वजह तो होगी, ऐसा आपके मन में विचार आता है तो कोई ना कोई कारण तो होगा। असल में बात ये हुई थी कि राजा साहब हो गए थे अस्वस्थ, तो बैद जी वगैरह के कहने से उनने ये घूमने का शुरू किया था और वो अस्वस्थता की खबर सब में थी। तो वो चंदन बेचने वाला था उसको भी अस्वस्थता की खबर मिली थी। मंत्री जी ने खोजबीन करी कि बात क्या है, तो चंदन वाले ने अपने मित्रों के बीच ये चर्चा की होगी, वो मंत्री जी ने पता कर ली। क्या चर्चा की थी? सुना है कि राजा अस्वस्थ हैं, अब क्या पता कितना जीवन शेष रहा है, और राजा साहब अगर नहीं रहेंगे तो उनका दाह संस्कार तो चंदन की लकड़ी से होगा। सो बहुत सारी मंगा मंगा के रख ली थी और बाद में मालूम पड़ा कि राजा तो स्वस्थ हो गए। रोज रोज राजा के बारे में यही विकल्प आता था कि अगर राजा का जीवन समाप्त हो जाता तो सारा चंदन मेरा बिक जाता, अब चंदन स्टॉक पड़ा हुआ है। ये जो राजा के बारे में अनकॉन्सियस में अचेतन अवचेतन मन में जो विचार पड़ा हुआ था वो राजा को भी दुर्भावना उत्पन्न करने में कारण बनता था, और उसके सामने से निकलते ही उनके मन में आता था कि इसको फांसी दे दी जाए, इसको नष्ट कर दिया जाए। इतना प्रभाव हमारे परस्पर के विचारों का पड़ता है। ये राग द्वेष की संतति ऐसे ही चलती है। इसको घटाने के लिए कह रहे कि शांति से सुबह दोपहर शाम थोड़ा अवसर तो निकालो जीवन में, नहीं तो पूरा जीवन ही इसी में व्यतीत हो जाए। तो पिछले दिनों हमने इस निराकुलता की और समता की साधना के लिए घर गृहस्थी में रह करके भी कैसे और अभ्यास किया जाता इस पर विचार किया था, और मन में विचार आया कि इतने से क्या होगा, थोड़ा इस प्रक्रिया को बढ़ाना चाहिए। तो कैसे करें? कहते पर्व दिनेशु चतुष्वपि मासे मासे स्वशक्ति मनि गुह्य प्रोषद नियम विधायी प्रणधि परः प्रोषधान असनम। तब एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए। महीने में हर महीने में चार दिन पर्व के आते हैं, मासे मासे पर्व दिनेशु चतुष्वपि, दो अष्टमी हैं, दो चतुर्दशी हैं, ये चार शाश्वत पर्व के दिन हैं जो हर माह में आते हैं। इनमें हम प्रोषध का नियम ले करके और उपवास करके अपनी उस निराकुलता की साधना को बढ़ाएं। पर्व किसे कहते भैया? बुंदेलखंड में पर्व के दिन को क्या कहते? आज पावन को दिन है, हैं? त्योहार कहते अपन, पावन का दिन कहते। तो वास्तव में वो जो पर्व है वो पवित्र दिन का नाम ही पर्व है। और पवित्रता कब आती है? जितना राग द्वेष घटता है उतनी पवित्रता उतनी निर्मलता आती है। या ये कहो कि राग द्वेष से रहत अपने उस वीतराग स्वभाव का अनुभव करने का दिन है वो पर्व का दिन है। जिस दिन भी हमारे राग द्वेष घटते हैं, वीतरागता का हमें अनुभव करने का आनंद मिलता है, वही हमारा दिन पर्व का है। आचार्य महाराज तो कहते कि सब दिन पर्व के हो जाएं अगर हमारे भीतर वीतरागता का अनुभव हो जाए, सब दिन पर्व के। ऐसे उस पर्व के दिन में क्या करना? प्रोषध का नियम निर्वाह करते हुए उपवास करना। प्रोषध और उपवास दो शब्द समझने के हैं ताकि हम इस अभ्यास को कर सकें। प्रोषध का मतलब होता सकृत भुक्ति, एक बार भोजन करना ये कहलाता प्रोषद, जिसको अपन लोग एक आसन कहते हैं। उसका नाम टेक्निकल जो जैन दर्शन का है वो प्रोषद है। वो प्रोषधेन सहिता उपवासा प्रोषधोपवासा, जो उपवास प्रोषद के साथ किया जाए या जिस उपवास के आजू बाजू दोनों तरफ प्रोषद हो, अर्थात जिसमें पहले एक आसन किया फिर उपवास और फिर एक आसन, ऐसा नहीं कि अब कल उपवास है सो आज संजाखों खूब ठूस ठूस के खा लो सो कल को उपवास अच्छे हो जाए, ऐसा नहीं। इसलिए रखा हुआ है कि प्रोषद एक दिन पहले तो एक आसना करी है, फिर उपवास किया और फिर जाकर के एक आसना करेंगे, कोई आकुलता नहीं है। क्योंकि यह जो भूख प्यास की आकुलता है वो भी तो एक जन्मजात आकुलता है, पता नहीं लगता अपन को, ये भी आकुलता, ये भी निराकुलता में बाधक है ये चीज। तो उस भूख प्यास की बाधा को सहन करके और अपनी निराकुलता को बनाए रखना, इसी भूख प्यास के पीछे ही जीव जो है वो अपने संसार के सारे प्रपंच में फंसा हुआ है। सुबह से शाम तक पशुओं को देखो, अगर आप गौर से देखोगे तो सिवाय दूसरी संज्ञा के और कुछ दिखाई पड़ता? आहार संज्ञा, यहां मुंह मारा वहां ढूंढ रहे हैं, यहां कर रहे, उस नाली में घुस रहे, चार दाने के लिए कहां कहां नहीं, दिन भर प्रयत्न चलता रहता है जब तक सुबह से लेकर के शाम तक, और कोई उनको खबर है किसी चीज की? बड़ी प्रबल ये संज्ञा है चारों संज्ञाओं में से आहार संज्ञा, और उसी आहार संज्ञा से उत्पन्न होने वाली आकुलता को दूर करने के लिए आचार्य भगवंत कह रहे कि अगर जी कमती हो जावे तो बहुत समय मिल जाएगा अपने आत्म साधना के लिए। ये विषयाशक्ति बढ़ाने वाली आकुलता है, ये जो भूख प्यास की है सो भूख तो मिट जाती भैया दो रोटी से, वो प्यास मिल जा मिट जाती पानी से, मनो ये भूख प्यास की वेदना बढ़ करके इतनी बढ़ जाती है कि फिर संसार का पूरा पसारा फैल जाता है इसी के पीछे, और कुछ नहीं। जा चीज चाने का के तपन के चटक मटक की चीजें जाने, अब और तो फिर शुरू हो जाता, उसमें फिर तो पांच इंद्रिय और मन के विषय हो आ जाएंगे और आकुलता बढ़ती जरा सी उस भूख प्यास के पीछे। और अगर उसको हमने जीत लिया तो फिर देखिएगा, उसी को जीतने के लिए चार पर्व के दिन निश्चित कर दिए कि दो अष्टमी दो चतुर्दशी, इनमें हम साधना करें, उपवास की साधना करें, एक आसन पूर्वक उपवास की साधना करें। उपवास की परिभाषाएं एक नहीं है, तीन परिभाषाएं हैं, तीनों एक साथ सधनी चाहिए। चारों प्रकार के भोजन का त्याग, चारों प्रकार की कषायों की मंदता, और उपवासे अपने आत्मा के निकट रहने की अवस्था, ये है उपवास, जिसमें हम चौके में नहीं जाते, भोजन पानी के पास नहीं जाते, अपने पास रहते हैं। सो चार प्रकार के आहार का त्याग हुआ, जिसमें हम क्रोध मान माया लोभ के निकट नहीं जाते, हम उससे बच करके अपने ही निकट बने रहते हैं, तो हो गया उपवास। और अपन लोग को अभ्यास है कि चारों प्रकार का आहार वर छोड़ दिया, बाकी तो चार कषाय करत रहो और आत्मा की तो खबर ले वही ने, दुनिया भर के प्रपंच में लगे रहो, बस अकेले चार प्रकार के आहार का त्याग है। यदि इसका नाम उपवास नहीं, ये तो लंघन कहलाती। ऐसा तो बहुत लोग करते हैं, नेता वगैरह तो यही करते, हंगर स्ट्राइक, उनने कर ले उसा भूख हड़ताल कर दी। तो भूख हड़ताल से क्या होने वाला, आत्मा का कल्याण थोड़ू होने वाला। विषय कषाय की पूर्ति की लाने की जाती, सो विषय कषाय की पूर्ति के लाने करोगे तो वो आत्म साधना नहीं कहलाएगी। साधना तो वो कहलाएगी जिसमें अपने आत्म कल्याण की भावना है, कर्मों की निर्जरा की भावना है, तब कषायों की मंदता और आत्मा की निकटता का अनुभव जिसमें होवे वो उपवास की प्रक्रिया है। सो गृहस्थ भी अपनी घर गृहस्थी के प्रपंच में रहते हुए भी और ऐसा अभ्यास करे तो उसके जीवन में बेहतर बनने के लिए और कोई ना कोई मार्ग सूझेगा उसके लिए। चार दिन भी, वैसे तो एक घड़ी भी पर्याप्त है, अपन इस चीज को भी बहुत बार विचार कर चुके कि अगर एक घड़ी भी, जितनी घड़ियां हैं एक घड़ी 24 मिनट की होती भैया, सो 60 घड़ी का दिन होता, एक घंटे में माने 48 मिनट एक मुहूर्त में, तो 30 मुहूर्त का होता 24 घंटे, तो 60 घड़ी होती हैं, उसमें से एक घड़ी भी अगर ठीक हो जावे तो बाकी सब घड़ियां अच्छी हो जाती। और वो एक घड़ी कौन सी, यही पर्व के दिन में, और हम शांति पूर्वक सुबह दोपहर शाम ही नहीं पूरे दिन, अभी तो सिर्फ सुबह दोपहर शाम समता की साधना करते थे, अब तो पूरे दिन करें, ऐसा अगर अभ्यास करें, उसके साथ में जुड़ा हुआ है स्वाध्याय, धर्मामृतम शत्रशना श्रवणाभ्याम पायेत अन्यान्वा। अब भूख प्यास की वेदना तो नहीं है, लेकिन कुछ ग्रहण करूं, किस चीज का पान करूं, तो धर्मामृतम शत्रशना, अत्यंत उत्साह पूर्वक, अत्यंत उमंग के साथ, अत्यंत ललक पूर्वक ग्रहण करें, तो क्या चीज ग्रहण करें, धर्मामृत का पान करें, और अकेले नहीं, अन्यान्वा दूसरे को भी धर्मामृत का पान कराएं, और इस तरह अपने पर्व के दिन को सार्थक करें, उपवास ऐसे व्यतीत करें, स्वाध्याय स्वयं करें, और दूसरे जीवों के लिए भी धर्म की दो बातें सुना करके उनके लिए भी मोक्ष मार्ग में सहयोगी बने, घर के लोगों को ही बिठाल करके, बहुत कठिन है, अपने पास पड़ोस के लोगों को बिठाल करके कि आओ भाई बैठो, अपन बैठे हो चार बातें धर्म की करें, ये तो संसार चलता रहता है ऐसे ही, तुम 24 घंटे और 365 दिन में लगे रहो, सो कोनो को नहीं कह बारो कि भैया बहुत होगा चलो ठहरो अब तक, नहीं जी, तो अपन को ही ठहर जाओ, सो ठहर जाओ, वरना तो ये लंबी दौड़ है अंतहीन, सो दौड़ते रहो सुबह से शाम तक और पूरे जीवन भर, तो ऐसा समय निकाल करके और स्वाध्याय करता है, ज्ञान और ध्यान में उसका समय व्यतीत हो, इसलिए किसी भी सांसारिक कार्यों में नहीं उलझेगा उस दिन कि आज उपवास है सो और चीजें विस्तार लो, नहीं, कोई सांसारिक प्रपंच नहीं करूंगा, सिर्फ अपना धर्म ध्यान करूंगा, ध्यान अध्ययन मनन चिंतन जो भी है अपन की जितनी सामर्थ्य है वो करेंगे, वरना तो चिंता और असंतोष ये दोनों चीजें गृहस्थ के पल्ले में आई हैं और उससे वो बच ही नहीं पाता है, बताइए आप कौन बच पाता है, भविष्य की चिंता है और वर्तमान में जो नहीं मिलो सो को असंतोष है, और अतीत के बारे में, अतीत तो गुजर गया अब का, भविष्य के लिए बहुत चिंतित हैं कि अब का हुई है, और वर्तमान में जो नहीं मिला उसका भारी असंतोष, जो मिला वो दिखता नहीं है, जो नहीं मिला है वो ही दिखता है, जी आंखें उसी के लिए बनी है, जी आंखें बाहर देखने के लिए बनी भैया, जी भीतर नहीं देख पाऊ, जी तो जब बंद हो जावे सो दिखात भीतर, सो जी बाहर जहां खुली तो बाहर का दिखता, और बाहर भी कौन सा, जो मिला वो नहीं, जो नहीं मिला वो ही दिखता, जी नहीं मिला बने असंतोष बना रहता 24 घंटे, उस चिंता और असंतोष वो ही अगर देखा जाए तो उपलब्धि है गृहस्थ की, और कछु उपलब्धि नहीं है,